हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 466। सुनैना और आदित्य मिलकर उन सभी को पूरी बात बता रहे हैं, क्योंकि आदित्य को नहीं लगता कि ये सारी बातें उसे उन लोगों से छिपानी चाहिए। आखिर अक्षत, नैना और स्वीटी को वो अपना मानता है और अपने सबसे करीबी लोगों में से। बाकी तो ज़्यादा वो वैसे भी किसी पर भरोसा नहीं करता। अक्षत, नैना भी एकदम सीरियस होकर उनकी बातें सुन रहे हैं, और पूरी बात सुनकर नैना का मुंह तो हैरानी से खुला का खुला रहकर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए वो बोली, इतना सब हो गया और हम में से किसी को पता भी नहीं चला। वो तो अच्छा है कि तुम्हारी सिक्योरिटी टीम इतना ज़्यादा अलर्ट रहती है और वो लोग टाइम पर तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच गए, नहीं तो वो पागल लड़की पता नहीं क्या करती। वो जो कुछ भी करती उसकी कीमत उसे चुकानी भी पड़ती, जैसे कि अभी। नैना की बात का जवाब देते हुए आदित्य एकदम ही गुस्से में बोल पड़ा, लेकिन तभी सुनैना ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे आगे कुछ भी न बोलने का इशारा किया। आदित्य उसका ये इशारा समझकर एकदम चुप हो गया, लेकिन उसके इस तरह से एकदम चुप होने पर अक्षत और नैना ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो लोग समझ गए थे कि कोई और बात है जो वो दोनों ही उन सबसे नहीं बता रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने सीधा इस बारे में पूछना ठीक नहीं समझा, क्योंकि अगर कोई ऐसी बात है जिसे वो दोनों ही छुपा रहे हैं तो उन दोनों को भी ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। स्वीटी भी उन दोनों की चोट के निशान देखकर उनके लिए काफ़ी परेशान थी, और नैना भी। वहाँ का माहौल काफ़ी सीरियस और टेंशन भरा हो गया था, इसलिए माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए अक्षत ने मजाक में कहा, सच कहूँ तो इतना एक्शन और एडवेंचर तो हमारी एक्शन फिल्मों में नहीं होता आदित्य, जितना तुम्हारी रियल लाइफ में हुआ है। लेकिन तुम्हारी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी ही ऐसी है, किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ। वो तो कहो लड़के पीछे नहीं पड़े अभी तक तुम्हारे। अक्षत ने ये बात बोली तो उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे, और तभी आदित्य ने कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो लड़की ही पागल है, और अगर तुम मुझसे मिले होते तो क्या पता पहले मुझसे पहले वो तुम्हारे ही पीछे पड़ जाती। इतने अमीर परिवार से है, लेकिन फिर भी एक साल पहले वो मेरे ऑफिस में काम भी करती थी, लेकिन जब मुझे उसकी असली इरादे पता चले तो मैं ही उसे काम से निकाल दिया था और उसे उसके अंकल को इलाज के लिए भी बोला था। अक्षत थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, अच्छा एक बार तुम उसे सबक सिखा चुके हो और उसने फिर से ये सब किया। सच में बहुत ही खतरनाक होगी लड़की, उसने कुछ नहीं सोचा तुम्हारे आगे। यहाँ तक को तुम दोनों शादीशुदा हो, फिर भी लोग बीच में आने से पहले एक बार नहीं सोचते। वो लोग ये सारी बातें कर ही रहे थे तभी आदित्य का मोबाइल फ़ोन रिंग हुआ और उसने कॉल रिसीव की और वहाँ से साइड में जाकर बात करने लगा। कॉल पर बात करके वो वहाँ पर वापस आया और उसने कहा, सोना तुम यहाँ पर सबके साथ रहो, मैं सिक्योरिटी को बोलकर जा रहा हूँ, एंड प्लीज़ तुम लोग अभी सोना को अकेले छोड़कर मत जाना, मैं कुछ घंटों में वापस आ जाऊँगा। आदित्य ने उन सब लोगों से कहा। उसकी बात सुनकर नैना, अक्षत, स्वीटी सभी ने हाँ में अपना सिर हिलाया, लेकिन सुनैना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और उसने तुरंत आदित्य का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, नहीं आदि, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो ये तो बताओ। आदित्य भी उसका हाथ पूरी तरह अपने हाथों में लेता हुआ बोला, मैं इसी से रिलेटेड एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ और हमारी सिक्योरिटी का परमानेंट इंतज़ाम करने। इसके अलावा जितने भी लोग हमारे दुश्मन हैं ना, बस ये समझ लो सबको उनकी सही जगह पर पहुँचाने के लिए कुछ इंतज़ाम किया है मैंने। आदित्य ने बिल्कुल भी सीधी तरह से उसकी बात का जवाब नहीं दिया और बात को गोल घुमाते हुए इस तरह से बोला कि सुनैना के साथ वहाँ मौजूद सारे ही लोग कन्फ्यूज़ हो गए और सुनैना उसकी बात से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नज़र नहीं आ रही, इसलिए उसने नज़र उठाकर आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, आदित्य प्लीज़ तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिससे कि बाद में हमें प्रॉब्लम हो और तुम मुझसे दूर हो जाओ। आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए एकदम मजबूती से कहा, इतना क्यों डर रही हो तुम सोना, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? और मैं ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं करूंगा, मैं बस गलत लोगों को सही रास्ते पर लेकर आऊंगा जिससे कि वो लोग बार बार हमारे रास्ते में ना आए। आदित्य उसे समझाते हुए बोला, तो ना चाहते हुए भी सुनैना ने धीरे से उसका हाथ छोड़ते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर उसके माथे पर किस करके आदित्य वहां से चला गया। सबके सामने इस तरह से माथे पर ही सही बट किस करने की वजह से सुनैना को थोड़ी सी शर्म आ गई, क्योंकि अक्षत भी वहां पर ही था और उसकी बड़ी बहन और आदित्य की छोटी बहन भी। लेकिन आदित्य ने इन सब लोगों पर इतना गौर नहीं किया, क्योंकि सभी को पता है वो दोनों हस्बैंड वाइफ और आदित्य का उसके लिए प्यार भी किसी से छिपा नहीं है। आदित्य वहां से चला गया, लेकिन सुनैना अपने चेहरे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। उसे इस तरह से देखकर स्वीटी उसके बगल में आकर बैठती हुई बोली, अरे भाभी अब तो एक साल से भी ज्यादा हो गए हैं आप दोनों की शादी को, और आप क्या अभी भी नहीं दुल्हन की तरह शर्मा रही हो? माथे पर ही तो किस किया है भाई ने, कौन सा लिप्स? स्वीटी ये बात बोल ही रही थी तभी सुनैना ने एकदम से पीछे मुड़कर उसकी तरफ घूरते हुए देखा और सुनैना के इस तरह से घूर कर देखने का मतलब समझते हुए स्वीटी फिर आगे कुछ नहीं बोली। वो चुप हो गई, अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। उसके इस तरह से हंसने पर अक्षत और नैना भू एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंसने लगे। सुनैना ने थोड़ा सा बनावटी गुस्सा करते हुए कहा, आप दोनों क्या हंस रहे हैं? आप दोनों तो ये बताइए कि आप शादी कब कर रहे हैं? दीदी, अच्छा लगता है आपको, छोटी बहन की शादी को 1 साल हो गया है और आप हैं कि अभी तक अपने रिश्ते को पब्लिक ही नहीं कर रहे हैं। अक्षत एकदम ही बोला, अरे मैं तो रेडी हूँ, लेकिन तुम्हारी बहन हाँ कर जपना। उसकी बात सुनकर नैना ने हैरानी से मुड़कर उसकी तरफ देखा और बोली, अरे मैंने कब मना किया, और वैसे भी आप तो पब्लिकली अनाउंस कर ही चुके हैं ना हमारी इंगेजमेंट। दोनों की बात सुनते हुए स्वीटी ने अपना मोबाइल फोन निकाला और उसमें कुछ सर्च करने लगी। फिर जैसे ही नैना ने ये बात बोली, स्वीटी अपने मोबाइल फोन में एक फोटो निकालकर उन सबको दिखाती हुई बोली, ये इसकी बात कर रहे हैं क्या आप? इसमें तो कुछ भी क्लियर नहीं है, सिर्फ आपकी रिंग और आप दोनों के हाथ ही दिख रहे हैं इस पोस्ट में। लेकिन फिर भी देखिए तो, इस पोस्ट पर 5 मिलियन से भी ज्यादा लाइक है, इसका मतलब कितने सारे फैन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वो नैना के हाथ में अंगूठी वाली पोस्ट देखकर सुनैना भी खुश होते हुए बोली, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। और वैसे भी उस इंटरव्यू के बाद से तो सबको ये भी पता है ना कि आप दोनों हो रिलेशनशिप में, तो फिर आप किस बात का डर है? अक्षत तुरंत ही मुस्कुराकर सुनैना की बात का जवाब देते हुए बोला, किसी बात का नहीं, तुम कहो तो अभी कल शादी कर लेता हूँ, पर पहले अपनी बहन को तो राजी करो ना। सुनैना भी अपनी बहन की साइड लेते हुए बोली, अरे दी ने बोला ना, वो कब मना कर रही है, वो तो पहले ही रेडी है और इसीलिए तो रिलेशनशिप में भी है ना आपके साथ, एक साथ ही रहते हो आप दोनों, शादी तो वैसे भी बस फॉर्मेलिटी ही होगी। नैना एकदम सीरियस होकर बोली, पता नहीं है सोनू, शादी बहुत ही बड़ा डिसीजन होती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम दोनों रेडी हैं, लेकिन अक्षत के पेरेंट्स, आई मीन उनकी मॉम को मैं पसंद नहीं हूँ, तो फिर कैसे हमारी शादी?
ये बात बोलते हुए नैना बहुत ही ज्यादा मायूस लग रही थी। तो फिर सुनैना ने इस बात को कन्फर्म करने के लिए अक्षत की तरफ देखा। उसने भी धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। इस बात को लेकर वो भी परेशान था, और वो भले ही नैना को समझा चुका है कि उसे इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी माँ के बिना तो वो भी उससे शादी नहीं कर सकता, भले ही वो हमेशा उसके साथ रहने के लिए रेडी है और कभी उसे छोड़ेगा भी नहीं। सुनैना ने अक्षत से सवाल किया, अरे क्यों अक्षत सर, आपकी मॉम को मेरी दी पसंद क्यों नहीं आई? आखिर आपके लिए तो वो कितनी परफेक्ट है ना, आप ही उन्हें कन्विंस करते कुछ तो बोलकर। नैना ने बीच में बोला, रहने दे सोनू, अक्षत की गलती नहीं है इसमें और ना ही उसकी मॉम की, वो बस उनकी एक्सपेक्टेशन शायद अलग होगी, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा। नैना ने एकदम समझदारी दिखाते हुए कहा। तो फिर सुनैना भी उसकी बात पर चुप हो गई और वहाँ का माहौल फिर से थोड़ा सा सीरियस हो गया, क्योंकि इस बार अक्षत भी एकदम सीरियस होकर कुछ सोचता हुआ उनके बीच बैठा है। दूसरी तरफ मनस्वी का होटल। अनय और मनस्वी दोनों वहाँ पर ही हैं, क्योंकि आज से वो दोनों एकदम टाइम से ही अपने काम पर आ गए हैं, और अंकित भी वहाँ पर गेट के बाहर ही खड़ा हुआ है अपनी बॉडीगार्ड वाली ड्यूटी पर। उसने जब से रिज़ाइन करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर वो मनस्वी को दूर से देख भी नहीं पाएगा, ये सोचकर वो ये नौकरी छोड़ नहीं पाया, क्योंकि मनस्वी खुद भी उसे जब से नहीं निकाल रही है तो कहीं ना कहीं उसके मन में थोड़ी बहुत उम्मीद किसी कोने में बची हुई है। इस होटल के गेट के बाहर एक ब्लैक मर्सिडीज कार आकर रुकती है, और उसके आगे पीछे भी दो ब्लैक बुलेरो कार, और उनमें से काफ़ी सारे लोग एक साथ निकल कर आते हैं। वो सब कुल मिलाकर 10-15 लोग हैं, और उनके बीच चल रहा है आदित्य, जो कि पूरी सिक्योरिटी के साथ इस वक्त यहाँ पर आया है। लेकिन इतने सारे लोग देखकर वहाँ होटल के सिक्योरिटी वाले एकदम परेशान हो गए, और अंकित के लीड में गार्डन वहाँ गेट पर आए और आदित्य और उनके गार्ड के सामने उनका रास्ता रोक कर खड़े हो गए। अंकित ने आगे आते हुए आदित्य से सवाल किया, मिस्टर सिंघानिया, आप अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और आने से पहले आपने इन्फॉर्म भी नहीं किया? मुझे नहीं लगता है मैडम के साथ आपकी कोई भी अपॉइंटमेंट या मीटिंग फिक्स होगी। आदित्य के साथ इस वक्त नदीम भी है, और उसने ही आगे जाकर अंकित की बात का जवाब देते हुए कहा, जब तुम सर को पहचानते हो तो फिर तुम ये बेवकूफ़ी बड़ा सवाल कर कैसे सकते हो? तुम्हें लगता है आदित्य सर को किसी भी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है मनस्वी राठौर से मिलने के लिए? अंकित उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, हाँ, लेकिन अगर किसी पर्सनल काम से मिलना है तो फिर वो उनके घर भी जा सकते थे। इस तरह ऑफिस में आए हैं और ऑफिशियल काम के लिए तो अपॉइंटमेंट लेना ही पड़ता है, ऐसे ही हम किसी को जाने नहीं दे सकते। नदीम उसे गुस्से से घूर कर बोला, कुछ ज़्यादा ही सीरियस मत हो जाओ मिस्टर बॉडीगार्ड, ये कोई तुम्हारी मैडम को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं, इन्हें बस उनसे एक ज़रूरी काम है और अनय सर से भी मिलना है, थोड़ा अर्जेंट था इसलिए ही यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि अभी वो लोग घर पर नहीं मिलेंगे, ये तुम्हें भी पता है। नदीम की ये बात सुनकर और थोड़े से आर्ग्यूमेंट के बाद आखिर अंकित ने उनका रास्ता छोड़ दिया और उनके साथ ही उन्हें लेकर मनस्वी के केबिन की तरफ आने लगा। मनस्वी और अनय दोनों आपस में बात करते हुए किसी सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे, और तभी एकदम से उनके केबिन का दरवाज़ा खुला और वहाँ पर आदित्य, उसके असिस्टेंट और अंकित तीनों को एक साथ देखकर वो दोनों थोड़ा सा चौंक गए। क्रमशः